జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి జయ యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యశోదా యమునా తీరామన చారి యమునా జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారి జయ రాధమ హరి కృష్ణ రే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ రే రామ 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 హరి 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 హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 జయ రాధా వృందాం బ్యారి రాధా వృందాం బ్యారి రాధే జయ రాధా మదన్ మోహన్ లలితా దేవీ రాధా మదన్ మోహన్ లలితా దేవీ జయ రాధా జయ రాధా గోపీనాథ రాధా గోపీనాథ రాధే జయ గిరి గోవర్ధన్ గిరి గోవర్ధన్ గిరి గోవర్ధన్ జయ గిరి గోవర్ధన్ జయ జయ కృష్ణ బలరామ్ కృష్ణ బలరామ్ కృష్ణ బలరామ్ జయ కృష్ణ బలరామ్ జయ గౌరనితాయ 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 జయ గౌరనితాయ जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परयोगाचार्य अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम इष्णुपाद परमहंस परयोगाचार्य अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधाकृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधाकुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुर धाम की श्री क्षेत्र पंडरपुर धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। वृंदादेव तुलसी रानी की जय। कलियुगपन हरनाम संकीर्तन की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। ऑल गुरुजी असेंबल्ड होती हरे कृष्ण। ऑल गुरुजी असेंबल्ड होती हरे कृष्ण। ऑल गुरुजी असेंबल्ड होती ऑल गुरिश टू सी गुरु यानी सी गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 13। सभी ने मेरे पीछे बोलना है। उन्मत्त मत्त जडवत् स्वसंस्थाम् गतस्य मे वीर चिकित्सस्य तेन अर्थः ज्ञान भवता शिक्षितेन शब्द प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः उन्मत्त मत्त जडवत्सव संस्थाम् गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान् भवता शिक्षितेन शब्द प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः उन्मत्त मत्त जडवत्सव संस्थाम् गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। उन्मत्त मत्त जडवत्सम संस्थाम् गतस्मि विरचिकित्सितेन हर्तकियान् भवता शिक्षितेन शब्द प्रमतस्य च पिष्टपेशः उत्तम मत्त जडवत्सवस्वस्वसाम् गतस्य मे वीरचिकित्सितेन हर्तकियान् भवता शिक्षितेन शब्द प्रमतस्य सच चिश पेष्टतेभ्यः आते जो कोई बोलेंगे तो उन्मत्त पागलपन मत्त शराबी जड़वत जड़ की भांति स्वसंस्थाम मेरी मूल स्वाभाविक स्थिति गतस्य प्राप्त किया हुआ मैं मुझको वीर हे राजा चिकित्सितेन अपनी भर्त्सना से अर्थ प्रयोजन कियान कौन सा भवता आपके द्वारा शिक्षितेन शिक्षा दिए गए स्तब्ध जड़ प्रमतस्य पागल मनुष्य का च भी पिष्ट पेशः आटा पिसने जैसा अनुवाद तात्पर्य से प्रबंध द्वारा हे राजन अपने कहा रे दुष्ट तथा जड़ तथा पागल मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओगे। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि भी मैं जड़ गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्धि व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल ही हूँ तो आपका यह दंड एक मेरे हुए घोड़े को पीटने का जैसे होगा, मरे हुए घोड़े को पीटने के जैसे होगा, उसके कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अवस्था में अर्जित झूठे विशेष प्रभाव के अंतर्गत पागल में समान आचरण करता है। उदाहरणार्थ चोर यह जानता है कि चोरी अच्छा काम नहीं है और यह कि इसके उपरांत राजा या ईश्वर से दंड मिलता है तथा चोरी पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें दंड देती है तो भी वह बारंबार चोरी करता है। उसके मन में यह विचार घर किए रहता है कि चोरी करने से यह सुखी हो जाएगा। यह तो पागलपना का लक्षण है। तो बारंबार दंडी होकर भी चोरी अपनी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ देती पाता, अतः दंड वृथा है। ओम अज्ञान निमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वप्तांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज यहाँ जो श्रीमद् भागवत का स्कंद 5 अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 13, तीस अध्याय में जो रघुगण राजा रघुगण सिंधु प्रांत के राजा रघुगण और जड़भरत महाराज इनके संवाद चल रहे हैं, ते संवाद से या द्रुवगन राजा उनको पिटकारते, शिक्षा डांटते, उनको कहते कि आपको अभी मैं ऐसे शिक्षा दूंगा तो आप होश में आ जाओगे। कि ये जो या पहले मैं बता रहा हूँ कि जो जट भरत महाराज है उनको ये द्रुवगन राजा शिक्षा देने का बता रहे, लेकिन ऐसे भरत महाराज हमारे देश में इतिहास में देख रहे तीन ऐसे भरत महाराज हो गए जिनके नाम से हमारे देश को भारत देश का नाम मिला है। जैसे देखिए ऋषभ देव के पुत्र, उनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, तो यही भरत महाराज आगे दूसरे अवतार में हिरण का जन्म लेते हैं, उसके बाद में जड भरत का इसी में रूप में आते हैं, तो इस श्रृंखला ऐसे है। और ये भरत है, दूसरा है अर्जुन के वंश में जो संतुराज शकुंतला से पुत्र थे भरत महाराज, उनसे हमें देश को भारत नाम मिल गया। और तीसरे की प्रभु राम, रामायण में देखते प्रभु राम के भाई भरत महाराज, ये भी ऐसे महान, तीनों भी भरत नाम से महान वैष्णव और सभी महाजन बन गए। तो यहाँ हम समझना चाहिए भरत महाराज के कैसे संबंध, उनकी चर्चा चल रहे। तो यहाँ से काफ़ी श्लोक से हम शिक्षा मिल रहे हैं, हम दूसरों को कैसे समझना चाहिए, किसी को आसान नहीं समझना चाहिए, वो कैसे वैष्णव है। और तीसरे किया जो आत्म साक्षात के लिए जो भगवान को स्वर्व सिद्धि व्यक्ति है, उनको हम समझ नहीं सकते कौन है सिद्धि व्यक्ति, कौन कैसे है, तो तुरंत ऐसे कोई व्यक्ति से वहाँ से हम श्रवण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये हम समझना चाहिए। यहाँ से इसे काफ़ी शिक्षा दे रहे और यह बता रहा है कि जैसे भरत महाराज को हम देखते हैं, भरत महाराज का कैसा धीरे धीरे आध्यात्मिक कार्य के लिए, भक्ति के लिए वो अपना राजपाट सारा छोड़कर वन में जाते। वन में जाने के बाद वहाँ एक हरिण से मोहित हो जाते, हरिण से, क्योंकि उस समय वो देख रहे थे भक्ति मार्ग के लिए करने के लिए वो जाते कि हमारे संसार जीवन में कुछ अनासक्ति नहीं, आसक्ति नहीं आना चाहिए, कुछ मोह नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने जो हमारे चाहे हमारे घर का कोई परिवार वैष्णव क्यों ना हो, भक्त क्यों ना हो, तो घर से ये हम अनासक्ति होने से हम घर का परिवार का त्याग करना चाहिए, कर आश्रम में जाके रहना चाहिए। तो ऐसे बताएं तो पहले से हम चार आश्रम वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो ये ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप से जाते हैं, तो वहाँ से हमारे धीरे धीरे ब्रह्मचर्य आश्रम से हम गृहस्थ बन जाते, गृहस्थ से वानप्रस्थ, क्योंकि राजपाट करते हम संसार में क्या फंस जाते, उसमें से अनासक्ति रहते, क्योंकि अपने परिवार के प्रति हमारा मोह रहते, आसक्ति रहती, उसमें हम कभी फंस सकते, तो वहाँ से हम लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम से भगवान के आश्रम में जाने के ऐसे शास्त्र में लिखा है। इसी तरह से जड भरत महाराज, भरत महाराज वो क्या करते, सारा राज्य छोड़कर वन में जाकर वो अपने भगवान का ध्यान भक्ति करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन अकेले गए थे। वहाँ उनको एक हिरण था, हिरण से क्या होता है, एक शेर से वो डरावने से वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो वहाँ से उनके डरने से उनका गर्भ वो प्रसूति हो जाते हैं, वहाँ से उसको जो शेर उसको खा देते, उसको जो बछड़ा था वो पारस उसको नदी में बह के रह जाता, उसको भरत महाराज उनको उठा देते, उसको बचा देते, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति बन जाती, उसमें उसका लालन पान करते, तो वहाँ से उनसे क्या होता है, धीरे धीरे अंत में उसके वो बड़ा होते थे तो जंगल में दौड़ने लगते, तो वहाँ से उनको आसक्ति बन जाते, तो वहाँ से मोह से उनको अंत में अगला जन्म उनको क्या मिल जाता है, हिरण का मन जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिखा है भगवद गीता में यम यम वापिस परम भाव तेजे तेनते कलेवरम, कि मृत्यु के समय जो भी हमारा भाव रहेगा उसी में अगले जन्म में हमें जन्म मिलता है था। तो उस समय भरत महाराज एक महाभारत 12 महाजन पे किए, लेकिन उनका शरीर छोड़ते समय हिरण के इसमें उनका ध्यान जाता है, इसीलिए अगला जन्म उनको हिरण में मिलता है, लेकिन वो पहले उन्होंने बहुत भक्ति की थी तो इसीलिए उनको हिरण के जन्म में भी उनको याद था, इसीलिए वो उगले में फंस गया, अगली बार मैं इन्हें करूंगा, तो वो हिरण क्या करते हैं, ऋषि मुनि के आश्रम के पास ही रहकर क्या करते, बड़ा उधर ही रहते और किधर जाते नहीं। तो उसको अगला जन्म उनको जड़ भरत एक वापस एक राजा के पुत्र के आते हैं। तो वो समय उनके कुछ भाई थे बड़े, तो वो उस समय उनको याद था अभी दो बार तो मेरा हो गया था, अभी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से किसी में फंसना चाहिए नहीं, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो पागल की तरह रहते थे, मंद जैसे रहते थे, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं, तो पूरे शरीर को अपने जैसे कुछ भी हो जिम्मेदारी नहीं लेते थे, क्योंकि मेरा अभी भगवान से अभी मुझे फंसना नहीं है। तो ये जड़ भरत महाराज जब जो रवगन राजा है सिंधु प्रांत के, तो उनको कोई जो पालकी के लिए चार आदमी लगते हैं तो उसके लिए भोर कहते उसको चाहिए था, तो एक आदमी कम पड़ रहा था। तो वहाँ जब आते हैं तो उसको जड़ भरत महाराज को जड़ भरत उनको बोलते हैं, तो उनको बोलते ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मजबूत है, तो उनको लेंगे। तो वो आत्म साक्षात के लिए उनको स्वरूप सिद्धि, तो भी वो किसी को मना नहीं करता है, को उनके शरीर स्तर पर आई ही नहीं, जो तो उनके लिए जाते हैं। जब वो जा रहे हैं उस समय वो क्या करते हैं, बीच बीच में चिटिया आती थी तो चिटिया के लिए वो बीच में रुक जाते थे। तो उस समय जो रुक जाएंगे तो बाकी लोग को जो राजा अंदर था रवगन उनको डिस्टर्ब होता है, तो वो पटकारते डांटते उनसे, और बार बार ऐसे होने के बोलते आपको ऐसे में शिक्षा दूंगा कि आप क्या होंगे होश में आ जाओगे। तो उस समय ये जो रवगन जड़ भरत महाराज है उनको कहते आप किसी तरह से संबंध, किसको आप शिक्षा कर रहे, मैं तो इस स्तर पर ही नहीं, गुंगे तथा बहरे मनुष्य के भांति रहता हूँ, तो मुझे मैं सचमुच मैं स्वरूप सिद्ध हूँ, आत्म साक्षात कर हूँ, तो मुझे इस शरीर स्तर पर शिक्षा करके क्या लाभ होगा। ये तो आप ऐसे है कि जैसे मरे हो घोड़े को चाबुक मार रहे हैं, तो उसको मारने से क्या लाभ है। तो उसी तरह से हमें आप ऐसी शिक्षा देकर होश में आएंगे ऐसे करेंगे तो उसका कुछ इसका लाभ हो ही नहीं सकता। या प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी तरह से कुछ चोर रहता है, चोर को हम कुछ शिक्षा करते हैं लेकिन वो फिर से वो चोरी करते रहते हैं। तो ऐसे समाज में तीन स्तर के कुछ ऐसे लोग रहते हैं अलग अलग स्तर के, तो उसमें से यार मैं जब स्कूल में एक चोरी कर तीन लोग चोरी करते तीन लोग चोरी करते तो राजा के पास जाते, उस समय उनको तीन प्रकार के शिक्षा दिए जाते। तो शिक्षा चोरी तो तीनों ने एक साथ किए थे, तो राजा के पास जाते तो राजा तीन प्रकार की उनको शिक्षा देते। तो उसमें ऐसा आपने क्यों किया, तो उसमें से तीन लोगों का जैसे स्तर है उनको उसी तरह से शिक्षा किया। तो पहला चोर था उसको कल इतने बोला आपने ये जो किया ये अच्छा नहीं किया, बस ठीक है आप जाओ, तो उसको इतना ही कहकर उनको छोड़ देते, उसको कुछ शिक्षा करते नहीं। लेकिन उनको इतना मनस्ताप होते वो जागते बाद में यहाँ से जाकर वो खुद को शिक्षा करके आत्महत्या कर देते क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। और दूसरा आते दूसरे को ये शिक्षा देते कि आप ये जो स्थान है छोड़कर जाओ, तरी पार उसको करते यहाँ से उसके गाँव छोड़ने के लिए। और तीसरा जो चोर था उसको ऐसी शिक्षा करते उनको बोलते कि इसको गधे पर बिठा कर गले में जूते पहनाओ, मुंह को पूरा काला कर दो और पूरे नगर में घुमाओ। तो उसी तरह से पूरे उसको नगर में घुमाते और इसे नगर में घुमाते घुमाते जाते और घुमाते घुमाते बीच में उसको सब लोग देखने आते हैं, तो उसमें उसकी बीबी भी थी बच्चे थे, तो बीबी से कहते हो अरे आप भी आके आके आप क्या करो आप जाओ और पानी गर्म करके रखो, मुझे आना पड़ेगा सब मूवी साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को शिक्षा करके क्या लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं। तो उसे उसी तरह से अलग अलग तरह से तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते कि इसी तरह से शिक्षा का कुछ लाभ नहीं होता है, उनको कुछ पनिशमेंट कुछ शिक्षा करते दंड देने से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लेकिन यहाँ जो भरत महाराज जो बोल रहे जड़ भरत महाराज बोल रहे जो वो जो बोल रहे हैं उनका भाव अलग है, वो स्वरूप सिद्ध है साक्षात करके, उनके बोले शरीर स्तर पर नहीं हो इनको करने से क्या मिलेगा, आत्म साक्षात आत्म के स्तर पर है। तो आत्मा को तो कुछ है ही नहीं, उसको दंडित करने का कुछ लाभ होता है ना। आत्मा तो कैसे नैनम छिदंती शसरानी नैनम दहती पावका नचनम क्ले देता पुनः शेषो इतमारा था। आत्मा कैसे इस आत्मा को कोई हम शस्त्र से काट नहीं सकते और हम किसी उनको अग्नि से जला नहीं सकते, पानी से भिगा नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते। ऐसे अविनाशी आत्माएं तो उसको ना कभी उसको टुकड़े कर सकते और ना उसको हम भिगा सकते। तो इसी से आत्मस्तर पर जो रहते वो स्वरूप सिद्धि लोग रहते, उनको शरीर स्तर पर कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इसे शरीर को या करने से कुछ भी ये नहीं होते, फर्क नहीं पड़ता उनसे। और यहाँ हम समझना चाहिए कि हमारे कि कैसे स्वरूप सिद्धि जो रहते उनको हम, कोई भी हमारे सामने रहेगा तो उनको हम सहज नहीं लेना चाहिए, आसान नहीं समझना चाहिए। सामने कोई भी कौन सी स्थिति में रहेगा ये समझना चाहिए। तो जैसे हम कि भगवद गीता में एक श्लोक है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण कवि हस्ते शुने चैव स्वपाक च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित हैं जो स्वरूप सिद्धि उच्च स्तर पर आते हैं सभी को एक समान देखते, एक स्तर पे देखते, उनको कुछ भेद नहीं रखते। हर एक चीज में उनको परमात्मा के स्वरूप में देखते हैं, भगवान के स्तर पर देखते हैं। जैसे हम कि भगवान ने तेसो कहा कि मैं वांश जीव लोग के जीव पता सब जीव मेरे अंश हैं और मैं सबके हृदय में स्थित भी हूँ। कि सर्वस्य चामृति से निष्ठ हो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मत स्मृति ज्ञान अपम न चाहो, मेरे से ज्ञान और जो विज्ञान है वो मैं स्मृत स्मृति स्मृति और ज्ञान और सब मेरे से आता है। तो ये हम समझना चाहिए, हर जीव को किसी स्तर पर देखना चाहिए। इस स्तर पर देखेंगे तो हमें से बहुत सारे अपराध नहीं हो सकते। हम सबको कुछ हम मैनेजमेंट लेवल पे एक दूसरे पे करते तो बात थोड़ा शिक्षा के लिए ऐसे हो सकते कि माता पिता बच्चों को शिक्षा कर रहे लेकिन उनका भाव अलग रहता है, उनको शिक्षा देने का अलग थे। तो उसी तरह से हम ऐसे लोगों को दूसरे को शिक्षा के गुरु या माता पिता जो शिक्षा है तो उनके लिए संवाद के लिए ऐसे हम एक दूसरे बोल सकते हैं। देखिए हम उनको स्थिति पर और किसी सामान्य लोग हम तुरंत किसी को आसान नहीं समझ सकते। या हम समझना चाहिए कि कैसे साक्षात्कारी पुरुष रहते हैं, कौन से अवस्था में रहेंगे वो समझ में नहीं सकते। क्या ऐसे कोई यहाँ भी पंडरपुर गए थे हम, पंडरपुर यात्रा में देखें कि जो भगवान विट्ठल जी का मंदिर है उनके जो सबसे जो पहला जो उसके पहले नामदेव महाराज की जी पहले स्टेप पाई रही है और उसके पहले एक समाधि संत चोखा मेला। तो संत चोखा मेला भी कैसे थे, ऐसे हीन जाति के परिवार में उन्हें जन्म लिया था लेकिन उनको तो वैसे वो देख रहे कि कैसे हम हीन जाति में परिवार है। तो उसको जब वहाँ पंडरपुर एक संत ज्ञानोस्वामी से उनको जो शिक्षा प्राप्त करते तो वो समय वो ऐसे दिंडी हरिनाम संकीर्तन जाते हैं तो हरिनाम संकीर्तन का बहुत पावर रहते हैं तो वहाँ से वो अटैच हो जाते हैं। तो उनको लगता है जैसे जा रहे हैं दिंडी में उसी तरह से वो उधर जाते पंडरपुर में जाते। तो पंडरपुर में जब जाते हैं तो उसके बीबी थी वो प्रेग्नेंट थी गर्भवती थी तो उन्होंने क्या उसको मैसेज दिया था, आप थोड़ा अभी तो मैं प्रस्तुति अभी मुझे आ था, आप थोड़ा सा ननंद को जाके मैसेज दे दो और अब आगे जाओ, आपको जाना है पंडरपुर। लेकिन वो ऐसे ही जाते हैं, वो मैसेज देने भूल जाते हैं, संदेशा देते नहीं उनको और वो ऐसे पंडरपुर जाते और उनको वहाँ उधर उनकी बहन मिलते उनको तो वो तो बेहोश में आते हैं। तो विट्ठल जी भगवान देख रहे रे जे वो उनको उनके बीबी तो उधर है और मेरा नाम जपते जपते इधर कहाँ आ गया, वो पंडरपुर आ गया। तो भगवान को चिंता रहती है अपने भक्ति, तो वो भगवान क्या करते हैं स्वयं उनका बहन का रूप धारण करके उनके घर पर जाते और उनकी प्रसूति करते, सारा काम काज भगवान करते। और जैसे ही वो पंडरपुर से उनको बहन को देखता है तो उनको याद, अरे मेरी बीवी ने मुझे बोला था, तो बोलते उसका क्या होगा, तो दौड़ दौड़ के आते। तब तो क्या यहाँ से भगवान अपना कार्य करके जाते तो उनकी बीवी बोलती है तो रुको रुको अभी भाई आएंगे आपका थोड़ा सा कुछ आपको साड़ी चोली देंगे सम्मान गिर गिरे। लेकिन वो भगवान समझ रहे अभी वो आ रहे हैं तो तो नहीं ना, अभी मेरे भी बच्चे, मेरे भी परिवार है, संसार है, थोड़ा अभी हो गया तो भाभी मैं जाती हूँ, तो इसी तरह से वो निकल जाती है। तो वो तक भगवान चौका मेला उनके बहन आते और उनको पूछताछ करते, आप कैसे इधर, बोलते आपका कैसा हो गया, अभी कैसे था, आपको तो आई थी, आप ही ने तो किया सब, ननंद को कहते तो चौका मेला तो लाई से, ये तो मेरे साथ थे पंडरपुर में, आपको कैसे हो गया। तो उनको समझ में आते स्वयं भगवान आकर अपने सेवा की, तो उनको बहुत बहुत भगवान से बोले नहीं बस हो गया, अभी कुछ करना नहीं। तो वहां से वो इधर जाते हैं सीधा पंडरपुर, चलो बहुत हो गया अभी सारा छोड़ कर वो पंडरपुर जाते हैं। लेकिन उनके वो बहुत अच्छी तरह से कारागिर थे, तो वहां के जो राजा था उनको बहुत बड़ा मेल काम काज था, तो वहां से उनको वापस पकड़ के लेके आते। तो उनको आसक्ति नहीं, जो काम चल रहा था तो उसके ऊपर विठ्ठल जी का ध्यान करते, वैसे विठ्ठल बनाकर, तो वहां से उनको आलाप करते और वहां से वो उनका जो बड़ा भिंत जो है पुणे मंगलवेड़ा में जो राजवाड़ा का काम चल रहा था वो सब गिर कर उसमें उनके सारे बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। तो उनको जो है स्वयं भगवान संत नामदेव महाराज को कहते हैं आप जाके उनकी हड्डियां लेके आओ और मेरे द्वार के सामने उनका समाधि बनाओ। तो वहां उनको समाधि बन गए। नामदेव महाराज से मैं उनकी हड्डियां कैसे पहचानूं, सैकड़ों लोग उसमें अंदर गए, कौन सा किसका हड्डी रहेगा, कैसे पहचान सकते। तो वहां जब जाते बोलते देखो अब जहां जाएंगे हर एक हड्डी को उठाना है और कान को लगाने, जिस हड्डी से हरिनाम आ जाएगा विठ्ठल विठ्ठल का नाम आएगा वो चौका में लगाए हड्डी। तो सारे ऐसे निकालते थे एक एक हड्डी को ऐसे कान को लगाते, जो विठ्ठल विठ्ठल कहते वो सारे हड्डी लेके आकर वो उसका समाधि बनाते। तो जो मृत्यु के बाद भी उनकी जो हड्डियां है हरिनाम ले रही थी, ऐसे संत चौका मेला का उधर समाधि बनाए। तो वो ऐसे महान थे, तो कौन किसे परिवार में जन्म लेगा, कौन संतों का हम समझ नहीं सकते। और वही संत चौका मेला वही कह रहे कि उस डोंगा पर ही रस नहीं डोंगा का ये भूलला से वरिलिया आऊंगा, कि हम बाहरी रूप से देखना नहीं चाहिए, जो जो गन्ना का रहता है वो उस रहता है वो कैसा रहता है, दिखने में ऐसे बाहर से बांबू जैसे लगता है लेकिन वो सचमुच बांबू है क्या, नहीं, बाद में उसको टेस्ट करने रस निकालेंगे तो उसका ऐसे मीठा रहता है। तो दिखने में बांबू जैसे लगता है लेकिन गन्ना दिखे तो बोझ है, उसी तरह से हम देखना चाहिए। और नदी डोंगी पर जल नहीं डोंगा, जो हमारे नदी रहती है वो ऐसे ऐसे जाते हैं, जल पानी तो पूरा सरल रहता है। और चोखा डोंगा पर भाव नहीं डोंगा, तो या चाहे चोखा हीन परिवार ने जन्म लिया है तो भी उनका भाव है वो कोई डोंगा नहीं, वो झूठा नहीं, वो सच्चाई भक्ति भाव से हम जाना चाहिए। तो ऐसे हम किसी को ये नहीं समझते, कोई कौन सा किसका भाव है, कौन किसका भाव, हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम सबको समझना चाहिए कौन किसे भाव है। रामायण में भी देखते हैं कि जो हीन जाति में जन्म लेते हैं वो शबरी, तो भी उनका भी कैसे कि वो अपनी शादी में बहुत सारे जानवर की हत्या करने वाले थे, लेकिन उसके लोग वो हम मेरी शादी के लिए इतने जानवरों की हत्या हो जाएगी तो उसके लिए हम शादी नहीं करेंगे। करीब 60,000 भेड़ बकरियां मेंढी थी उसको वो छोड़ देते, बोले मैं शादी नहीं करूंगी, और वो जंगल में भाग जाती है। अंत में वो मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर वह आश्रय लेते और वहाँ उनको वो भक्ति करते। देखो वो मातंग ऋषि उनको क्या आशीर्वाद देते, आपने इतना सरलता से भक्ति किया है, आगे आपको स्वयं भगवान आकर आपको आपके ऐसे, तो कितने साल उधर इंतजार करते हुए, और भगवान उनके झूठे बेर खाते, झूठे बेर उनसे खा सकते। तो यहाँ हम समझना चाहिए कोई कैसे हम करते। तो भगवान की जो परम भक्ति जो करने का अधिकार भगवान गीता में भी दिखते हैं, 9वें अध्याय में मामी पार्थे पासी तो ये भी सब पापियों ने स्त्रिया वैशा तथा शुद्रास्ते प्यांति पराम गति, मेरी जो भक्ति करने का अधिकार है वो कौन सबको, स्त्री है वैश्य क्षुद्र है तथा कोई चांडाल है कुत्ते का मांस खाता है उनका भी मेरी परम गति परम भक्ति करने का अधिकार है। तो वहां से हम सबको भक्ति स्तर पर लाने के लिए हम इसको या भागवत से उदाहरण देख सकते हैं। और हमारे तो भागवत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो बहुत से महान व्यक्ति संत है। तो वहाँ हमारे भाग्य ऐसे कि स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से अपने वैष्णव परंपरा से इसमें से किसी को भी ऐसे हीन नहीं समझते, सबको अच्छा है। और कितना भी हो जाए हम हमेशा सबको सम्मानित करते हैं, हरिष्णा बोलते हैं, माता है, प्रभु जी है, और बहुत सारे आपस से बच जाते, क्यों हमारा इस परंपरा से जुड़े होने के कारण हम बहुत सबको सम्मानित करते हैं। जो भी अतिथि आते हैं उनको भी हम समझ रहे हैं ये प्रभुपाद के अतिथि है, ये भगवान के अतिथि है, उनकी तरह से हम उनको पकड़ते हैं। चाहे वो कोई भी हो अभी आ रहा है, लेकिन वो आगे महान भक्त हो जाएगा। तो कितना भाग्य है इस परंपरा से जुड़े होने से। उसी तरह से पूरे जगत में इसका प्रचार हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु स्वामी प्रभुपाद सारे आचार्यगण की कृपा से ये हमें शिक्षा मिल रहे हैं। नहीं तो क्या हो सकता था, यहाँ से इस ज्ञान से हमें लगता था हम बहुत अहंकारी बन सकते थे, बहुत अहंकारी बन सकते थे। तो काफी देख रहे हम इधर बाहर के लोगों को छोटी छोटी चीज पे कैसे घमंड आ जाते, अहंकार आ जाते, तो वहां से हमारा सबका पतन हो जाता है। तो यहाँ से हमें ऐसे इस परंपरा से जुड़े हुए हमें उसको अहंकार से बहुत सारे बच जाते हैं। तो यहाँ देख रहे कि अहंकार भी नहीं आना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा से भी देखा है हम कैसे हमेशा कैसा रहना चाहिए। तृणादपि सुनिचेनो तरोरपि सहिष्णा अमानिना मानिदिन कीर्तनी आसधारी। हम हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा तृण जो घास है उनके जैसे हम नम्र होना चाहिए, वृक्ष के जैसे, पेड़ के जैसे हम सहन करना चाहिए। और अमानिना मानिदिन हमेशा हम क्या करना चाहिए, मान की अपेक्षा रखना नहीं चाहिए और दूसरों को मान देना हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ से हमें कभी अहंकार नहीं आ सकता है। और इस तरह से रहने से हम हमेशा भगवान के नाम में गुणगान में रह सकते हैं। तो ये मेरे शिक्षा से हम और इस श्लोक को महाराज तो हमेशा हर एक क्लास में महाराज इसके ऊपर फोर्स करते, बताते हैं, शिक्षा देते हैं। और स्वयं रूप गोस्वामी ये श्लोक के लिए बताते कि ये जो श्लोक है ना ये हमेशा गले में लटका कर पहनो, ये श्लोक लिख कर ऐसे गले में पहनो, क्योंकि हमेशा हमें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए और सहन करना चाहिए, हमेशा दूसरे को सम्मानित करना चाहिए। तो हम यहाँ से शिक्षा देने चाहिए। और जो जड़ व्रत मार से वहाँ से हम जो रघुगुण महाराज है उनसे भी देखते हैं हम, तो रघुगुण महाराज वो जैसे बताते हैं तो समझ जाते हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो रघुगुण महाराज भी तुरंत से पालकी से उतर जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चालू करते हैं। तो यहाँ से हम कहीं से कौन आता है तो उसको तुरंत शिक्षा ग्रहण करना हम शुरुआत करना चाहिए। तो कोई भी हमें आते हैं आगे से कुछ संदेश आ रहे तो उसको समझना चाहिए। तो ये हम ये रघुगुण महाराज से भी शिक्षा करते, वो भी राजा थे लेकिन वो अहंकार से जुड़े नहीं थे, आप मुझे ऐसे बोल रहे ऐसे नहीं, उनके उपदेश से उनके से संदेशा से समझ जाते वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो वहाँ से वो उपदेश ग्रहण करना चालू करते हैं। तो वहाँ से हम शिक्षा कर सकते कि दोनों अवस्था में यहाँ का जो रोल बताए तो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अपराध से बचना चाहिए, अपराध वैष्णव अपराध बहुत घातक रहता है, तो उसे तुरंत क्षमा मांगे तो यहाँ सम्मानित बचना चाहिए। ये हम शिक्षा दे रहे थे। हरे कृष्णा। तो हमारा भाग्य है गुरु महाराज की कृपा से या सब कुछ आसान हो रहा है और हमेशा एक दूसरे से हम कुछ भी हो जाए तुरंत दंडवत प्रणाम करते, वांछा कल्पद्रव्य भिच्च कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ऐसे हमारे से परंपरा से बहुत सारे हम अपराध से बच सकते, अहंकार नहीं आ सकते। हरे कृष्ण। बहुत किसी को कुछ प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।